हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। आत्मज्ञान के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को धर्म का ज्ञान, हालांकि स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, परंतु भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इन श्लोकों के द्वारा भगवान ये व्यक्त कर रहे हैं कि उस धर्म को मैं अपने भक्तों के द्वारा प्रस्थापित करता हूं। और इसलिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ये धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिए भगवान यहां पर अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे भगवान अर्जुन पर निर्भर हैं इस धर्म की स्थापना करने के हेतु। तो इसलिए भगवान इन श्लोकों के द्वारा अर्जुन को न केवल अर्जुन का स्वधर्म याद दिला रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को क्या क्या लाभ होंगे इस धर्म युद्ध को लड़ने से, केवल लड़ने से। भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जीतो। अक्सर इस भौतिक संसार में जो बॉस होता है वो हर समय रिजल्ट क्या चाहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पर भगवान कह रहे हैं यू सिंपली डू योर एफर्ट, तुम केवल गांडी उठा के युद्ध करो, हार जीत। भगवान तो यहां तक कह दिया हार जीत, सम सुख दुखे या लाभा लाभो जया जयो, कि जय पराजय लाभ हानि इन सब की चिंता अर्जुन तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल युद्ध करो, केवल तुम्हारा स्वधर्म। तो भगवान अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से उसके स्वधर्म का लाभ दिला रहे थे और उसके साथ साथ सामाजिक रूप से अर्जुन जो ये युद्ध लड़े उसके वजह से अर्जुन की ख्याति, अर्जुन की कीर्ति वो आज तक गाई जा रही और नित्य रूप से अर्जुन की कीर्ति गाई जाएगी। तो भगवान अब धर्म के विषय में अर्जुन को और आगे समझाते हुए कहते हैं, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। ये जो धर्म संग्राम, यहां पर भगवान संग्राम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि अर्जुन को अब अलग अलग तरीके से कोई यहां पर शांति स्थापित करने के लिए हम लोग एकत्रित नहीं हुए हैं, इसलिए ये जो शब्द है संग्राम इसे तुरंत मन में हम कौन सा चित्र पेंट कर लेते हैं कि बहुत कोई दो पार्टियों के बीच में कि मुठभेड़ जैसे कुछ हो रहा है, संग्राम। लेकिन भगवान कहते हैं धर्म्यम, ये धर्म संग्राम है। और न करिष्यसि, यदि तुम नहीं करोगे अर्जुन ये धर्म युद्ध, नहीं लड़ोगे, धर्म संग्राम यदि नहीं करोगे तो होगा क्या? तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, तुम्हारा स्वधर्म और तुम्हारी कीर्ति ये दोनों तुम खो बैठोगे। तो मानो अर्जुन पूछे, तो एक भक्त होने के नाते मैं क्यों कीर्ति के पीछे भागूं? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, केवल उतना ही नहीं, हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम यदि तुम्हारा स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। तो इसलिए पिछले हफ्ते हमने सुना श्रील प्रभुपाद की व्याख्या कि महाभारत का युद्ध एक यज्ञ था, केवल भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं थी, और कुरुक्षेत्र की रणभूमि, यज्ञ कुंड, अर्जुन पुरोहित, भगवान ने पुरोहित के रूप में अर्जुन को नियुक्त किया, कुरुसेना वो आहुति अर्जुन जिनकी दे रहे, जैसे पुरोहित आहुति देता, और क्यों ये धर्म युद्ध, क्यों ये यज्ञ कहा गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर मौजूद यज्ञेश्वर के रूप में, यज्ञ से पहले यज्ञेश्वर मौजूद। ऐसा कोई यज्ञ आज तक नहीं हुआ जहां पर यज्ञ संपन्न करने से पहले यज्ञेश्वर आ गए, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये एक यज्ञ है अर्जुन, जिसमें मैं यज्ञेश्वर पहले से ही मौजूद हूं और मैं बता रहा हूं। अक्सर जो पुरोहित होते हैं, जो बाकी मंत्रोच्चारण करते हैं, वो सक्षम होते हैं यज्ञेश्वर को आह्वान देने के लिए, यहां पर वो सुपरवाइज करते हैं, यहां पर साक्षात यज्ञेश्वर सुपरवाइज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं किन की आहुति दो, कैसे दो, ये यज्ञ कैसे शुरू करो, सब कुछ यहां पर यज्ञेश्वर बता रहे हैं। तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात अर्जुन के लिए और क्या हो सकती थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की इस व्याख्या द्वारा हम पहले ये स्थापित कर चुके हैं कि ये युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये एक यज्ञ के रूप। तो आज हम श्लोक से क्या चर्चा करेंगे, पिछले श्लोक से क्या संबंध है? भगवान स्वधर्म एवं कीर्ति के विषय में कह रहे हैं, अर्जुन कैसे यदि नहीं लड़ेंगे तो पाप को प्राप्त होंगे, और रामायण से पाप की व्याख्या आज हम सुनेंगे, और क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक एवं मार्गशीर्ष महीनों से हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो पिछले श्लोक में और उससे भी पिछले श्लोक में भगवान ने युद्ध करने के लाभ बताए, और आज के श्लोक में युद्ध नहीं करने के नुकसान, ये दोनों का कनेक्शन है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट के विषय में सुनते हो तो दोनों बताया जाता है। आजकल एडवर्टाइजिंग ऐसे चलता है, पहले एडवर्टाइजिंग कैसे चलता था कि ये प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है ये बताया जाता था, आजकल एडवर्टाइजिंग कैसे चलता है कि यदि ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप तो बस किसी काम के नहीं संसार में। इसलिए वो एक साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं हमारे अंदर कि, और दिखाते हैं कि दूसरों के पास कैसे है, और आपके पास नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसके, और दूसरों के पास है तो कैसे उनको फायदे हो रहे हैं। तो भगवान यहां पर फायदे नुकसान की चर्चा करते हुए बताए, और इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने, हमने सुना प्रथम अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं यदि अपने स्वजनों को मारूंगा तो नरक जाऊं, और भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम नहीं मारोगे तो नरक जाओगे, उल्टा। तो अब अर्जुन थोड़ा और चौकन्ना और भौचक्का रह जा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो नरक जाऊंगा। एक बहुत गहन प्रश्न अर्जुन के मुख के ऊपर दिख रहा था भगवान। तो ये पिछले और आज के श्लोक का संबंध। तो अब भगवान आज के श्लोक में स्वधर्म एवं कीर्ति के चले जाने का भय, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान ने स्वधर्म या धर्म युद्ध या धर्म संग्राम ये बहुत बार शब्द इस्तेमाल किया। तो इन श्लोकों की व्याख्या हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की और उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक शेर होता है, शेर का स्वभाव क्या होता है। जैसे ही हम किसी शेर का चित्र देखते हैं, शेर को देखते हैं, कौन सा शेर आजकल कलयुग में। जैसे मेरा एक मित्र था, वो हमारे एक पार्टी में उसने कहा कि गालिब ने एक शेर मारा, गालिब ने एक शेर मारा, गालिब ने एक शेर मारा। तो बाकी कहते हैं अरे तो आगे क्या हुआ, तो शेरनी विधवा हो गई। तो वो शेरनी कह रहे हैं सिंह। तो एक शेर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शेर का स्वभाव क्या होता है, खूंखार, खूंखार होता है वो। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी स्वभाव का हर समय दिखता है। कभी देखा है वो स्माइल मारते हुए शेर को, क्योंकि फोटो भी खींचता है, तो उसको यदि बोले भी कि एक स्माइल दो फोटो खींचने, तो एकदम हर समय वो खूंखार, उसके चेहरे पर वो गुस्सा क्रोध दिखता है और लड़ाई के लिए आतुर। तो चक्रवर्ती पाद ये उदाहरण देते हैं कि जैसे शेर वो अपना स्वधर्म कभी छोड़ता नहीं, उसको प्रकृति ने खूंखार बनाया है तो वो कभी घास फूस नहीं खाता, कभी वो घास फूस एकादशी वगैरह नहीं करता। तो जैसे शेर अपना स्वधर्म नहीं छोड़ता, यहां तक कि एक शेर का छोटा सा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, वो छोटा सा बच्चा उसके भी रगों में उसके ही बाप का खून है ना। वो कहते हैं कि वो छोटा सा शेर का बच्चा, अ टाइगर्स कब व्हेन सीज एन एलिफेंट स्टार्ट्स टू रोर, वो छोटा सा है इतना सा ठेंगड़ा, लेकिन वहां से भी वो हाथी, कितना बड़ा हाथी हो उसके ऊपर भी वो जो छोटी सी उसकी आवाज है उसमें से वो उसके ऊपर घुर्राना शुरू करता है, क्योंकि वो हालांकि छोटा सा भी क्यों ना हो वो अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ता। इसलिए एक शेर जो है उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण किसका गुण, प्रहार करने का गुण स्वाभाविक। तो उदाहरण देते हैं रामायण से प्रभु श्री राम का, कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में थे तो अयोध्या की जो लीला प्रभु श्री राम की, उसमें सब मनोहर लीलाएं, सीता से विवाह हुआ है और अब राज्याभिषेक की तैयारियां वगैरह सब चल रही हैं, अब प्रभु श्री राम को राजा बना दिया जाएगा, दशरथ महाराज इतने प्रसन्न, वहां तक कि कैकेयी इतनी प्रसन्न थी, अब तक मंथरा से नहीं मिली थी, तो सब कुछ एकदम बहुत ही सकुशल चल रहा था। परंतु प्रभु श्री राम अंदर ही अंदर इतने खुश नहीं थे। क्यों? जैसे कि शेर बिना किसी हिंसा के खुश नहीं रहता है ना, वैसे प्रभु श्री राम अवतरित हुए इन राक्षसों का वध करने के लिए और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए। तो उन्हें मन ही मन लग रहा था कि क्षत्रिय धर्म का अर्थ ये नहीं कि केवल बस शादी कर कर अब राज्य में एकदम सुकून से रहो, नहीं, क्षत्रिय का अर्थ है कुछ ना कुछ होना, होते रहना चाहिए। धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ मार काट, खून खराबा, ये सब कुछ, तब उनको एक्साइटमेंट मिलता है। तो प्रभु श्री राम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए जैसे ही कैकेयी ने ये वार्ता सुनाई कि 14 वर्ष के लिए वनवास, तो प्रभु श्री राम उसी प्रकार से प्रसन्न हुए जैसे कि एक शेर जब किसी हिरण को देखता है या किसी अन्य प्राणी को देखता है प्रहार करने, when the tiger sees the prey, तो प्रभु श्री राम बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर वो प्रसन्न हुए। तो यहां पर वही श्री राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को उकसा रहे हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो और तुम कोई साधारण क्षत्रिय नहीं। अर्जुन की कीर्ति के बारे में भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं इस श्लोक में। आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि अर्जुन किस स्तर के क्षत्रिय थे, क्या लेवल था, क्षत्रियों में अर्जुन का लेवल क्या था, जहां तक उनका यश उनकी कीर्ति सवाल आता है। तो स्वधर्म एवं कीर्ति चले जाने का भय भगवान इस श्लोक में कहते हैं। स्वधर्म की यदि चर्चा हम करें तो गर्ग संहिता से एक उदाहरण है। अमरावती स्वर्ग, वहां पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था उत्तथ्य, और इन ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। लेकिन वो हालांकि एक ब्राह्मण कुल में जन्मे ये 5, और उत्तथ्य बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण थे, केवल नाम से नहीं बल्कि वो अपने कर्मों से, गुणों से उन्होंने उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। तो इनके ये 5 पुत्र ये गुरुकुल में मंत्रोच्चारण सीखने के बजाय, ब्राह्मणों का स्वधर्म सीखने के बजाय, ये 5 पुत्र इनके ये मल्ल युद्ध सीखने जाते थे रोज, कुश्ती। अब देखो ब्राह्मण कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। तो इनको, इनके जो पिता उत्तथ्य, इनको बहुत बुरा लगता है कि ये अपना स्वधर्म छोड़ के ये क्या ना मार काट में लगे हुए हैं इसमें, वो भी कुश्ती। तो मंत्रोच्चारण छोड़कर वो वहां पर अखाड़े में दिखते, गुरुकुल छोड़कर यज्ञ वगैरह सब करने के बजाय अखाड़े में। तो इनके पिता ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे इन आचरणों के वजह से तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। देखो वो श्राप होता है ऊपर, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि स्वर्ग में किसी को मनुष्य बोलना गाली हो तो वैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेना ये श्राप है वहां पे। तो पृथ्वी पर जन्म लोगे और तुम असुरों के साथ संग करोगे। तो ये 5 पुत्र उत्तथ्य ब्राह्मण के, वो पृथ्वी पे जन्मे और वो कंस के अंडर वही किया उन्होंने मल्ल युद्ध, और ये बने चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। तो केवल चाणूर और मुष्टिक नहीं थे, बाकी 3 भी थे उनके, उनके बाकी 3 भाई भी थे, लेकिन चाणूर और मुष्टिक को भगवान ने खत्म कर दिया। तो बाकी 3 फिर सोचे कि हमारे बड़े 2 भाई गए तो हमें थोड़ा सावधान होना है। फिर उन्हें याद आया कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मणत्व का पालन नहीं किए, इसलिए उन्हें ये श्राप मिला था। तो ये उदाहरण है अपने स्वधर्म का पालन जो नहीं करता है कैसे वो अपने कीर्ति को खोता है। तो स्वर्ग अमरावती से वो च्युत हुए और पृथ्वी पर, और वो भी कंस के साथ, कंस के अंडर। हालांकि ये उनको वरदान मिला था कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ। अब यदि अर्जुन की कीर्ति को हम देखें कि अर्जुन का बायोडाटा, भगवान याद दिला रहे हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल्स अर्जुन के थे, ये यदि हम देखें तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को बहुत ही विशेष शिक्षा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दी थी। जैसे द्रोणाचार्य ने जब देखा कि अर्जुन दिन रात धनुर्विद्या सीखने के लिए इतने तत्पर कि रात्रि को अर्जुन सोते भी नहीं थे गुरुकुल में। अब अक्सर पूरे दिन भर वो जो भी युद्ध विद्या सीखने के पश्चात, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के पश्चात, जो द्रोणाचार्य के गुरुकुल के ब्रह्मचारी रात तो सब अच्छी से सोते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में रात में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सोने के लिए। यदि इसलिए कई बार जब प्रोग्राम थोड़े लेट हो जाते हैं तो मुझे याद है हम राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत कम ऐसे दिन होते थे जब 9 बजे सोने मिलता, जैसे भगवान के पट बंद होते 9 बजे सोने मिलता, नहीं तो वहां पे प्रोग्राम 11:30 आते, वो लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के पसीने पसीने होके। और फिर हमें याद है कि वो चटाई, हम वो जमीन पे जो चटाई डालते थे सोने के लिए, वो जैसे वो चटाई डाली तो जैसे वो डंडे के जैसे गिरते हैं, दंडवत जिसे कहते हैं ऐसे, और उसी पोजीशन में उठते थे। तो कई बार तो जब 9 बजे सोने का समय वो चांस मिलता, कोई प्रोग्राम नहीं या कुछ हो गया, कैंसल हो गया, तो जैसे ही भगवान का ऑल्टर बंद हुआ यहां चटाई खुली उसके साथ साथ, बाकियों को लगता था कई थोड़े वो अभी तक दर्शन लेके यहां वहां थोड़े बातें करते बाहर के कांग्रेगेशन की, तो उनको लगता था कि वो दंडवत दे रहे हैं, देखिए बहुत देर तक दंडवत दे रहे हैं, तो 9 से लेके सुबह 4 बजे तक दंडवत चल रहा है इनका। तो द्रोणाचार्य उन्होंने जब अर्जुन देखा कि अर्जुन गुड़ाकेश, उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है कि रात भर, तो इसलिए द्रोणाचार्य ने विशेष अर्जुन को अपनी कृपा दी। और कौन सी कृपा? अर्जुन को वो कला, धनुर्विद्या की वो कला सिखाई जिससे अर्जुन द्रोणाचार्य को मार सके, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध होने वाला है और युद्ध में अर्जुन मेरे विपरीत, विपक्ष की सेना में रहेंगे। तो वो सब जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वो विशेष कला सिखाई। और वो जो प्रसिद्ध घटना है जिसमें अर्जुन, वो जो पक्षी की आंख है, पक्षी की आंख पर निशाना लगाने के लिए जब द्रोणाचार्य ने सबको कहा, हम सब ये कथा सुने हैं बहुत बार, तो ऐसा नहीं था कि बाकी सारे जो पांडव और कौरव वो निशाना नहीं साध सकते थे। जब द्रोणाचार्य ने बाकियों को पूछा कि क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ की डाली दिख रही है, पक्षी दिख रहा है, तो उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें निशाना लगाने के लिए, निशाना मारने के लिए नहीं कहा। हालांकि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये भी कर सकते हैं, सब कुछ देखने के बावजूद भी वो उस पक्षी की आंख पर अपना निशाना लगा सकते हैं, लेकिन केवल अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा केवल तुम मारो। सो द क्वालिटी ऑफ अर्जुन वॉज नॉट जस्ट द एब्जॉर्प्शन, लुकिंग एट द आई ऑफ द बर्ड, बट नो डिस्ट्रैक्शन, वो बाकियों में नहीं था। क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाकियों में भी था, बट विदाउट डिस्ट्रैक्शन वो केवल अर्जुन में था। इसलिए हर एक पग पर द्रोणाचार्य अर्जुन को देख रहे थे जैसे अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहे थे। इसलिए द्रोणाचार्य ने ये एक विशेष शिक्षा अर्जुन को दी ताकि अर्जुन द्रोणाचार्य उनके गुरु को ही परास्त कर सके। ऐसी शिक्षा, कौन ऐसा गुरु अपने शिष्य को ये शिक्षा देगा कि तुम मुझे परास्त कर सको, ये शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। इससे आगे सेकंड क्वालिफिकेशन अर्जुन का कि अर्जुन अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग तक पहुंचे और वो भी इसी देह में। स्वर्ग में कोई मनुष्य के देह में नहीं जा सकता, कोई एंट्री नहीं मनुष्य के देह में। वहां पर मनुष्य देह त्याग कर स्वर्गीय देह जिसको प्राप्त होता है उसी को वहां पर एंट्री। केवल अर्जुन के लिए ये एक्सेप्शन, क्योंकि इंद्र, देवराज इंद्र ने अपने रथ और सारथी को भेजा अर्जुन को बुलाने के लिए। ऐसा नहीं था कि अर्जुन बहुत टाइम से याचना कर रहे थे मुझे एंट्री मिलेगी, मुझे एंट्री मिले, स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, मुझे मुझे आना है आना है। स्वयं देवराज इंद्र ने माताली, उनकी जो सारथी है और उनका जो रथ है उसे भेजा। और ये माताली और रथ देवराज इंद्र ने रामचंद्र जी को दिया था। रामायण में वर्णन है कि रामचंद्र जी के पास रथ नहीं था, सारथी नहीं था, तो सब बंदर थे वहां पे। तो उनके पास तो देवराज इंद्र ने अपना रथ और अपना सारथी वो भेजा रावण के साथ युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम। तो वही रथ और वही सारथी अर्जुन के लिए देवराज इंद्र ने भेजा स्वर्ग में अर्जुन आए स्वदेह। तो अर्जुन वहां पहुंचते और इंद्र ने अपने ही सिंहासन पर, जैसे अब देखिए इंद्र का सिंहासन सभी देवताओं में, इसलिए उनको देवराज, देवताओं के राजा इंद्र, और उनके सिंहासन पर इंद्र थोड़े साइड में बैठे और अर्जुन को बिठाया अपने सिंहासन। वो लोकल ट्रेन में कोई अगर बहुत आपका प्रेमी व्यक्ति आया तो उसको आप अपने ही सीट पे बिठा दो, चलो इधर ही बैठो मेरे साथ। तो वैसे अपने ही सिंहासन पर आधा आधा करके अर्जुन को बिठाया। तो ये अर्जुन की ख्याति थी, सभी वहां पर सुने हुए थे कि अर्जुन अर्जुन आ रहे हैं, तो पूरे स्वर्ग में ये न्यूज था, सब जगह वो पोस्टर वोस्टर लगा हुआ था अर्जुन आ रहे हैं। तो सभी अर्जुन को देखने के लिए इतने उतावले कि इस अर्जुन के विषय में जो हमने सुन रखा है वो अर्जुन आज स्वर्ग में आ रहा है। तो भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन ये तुम्हारी ख्याति थी, ख्याति है, इसको गंवाओ मत। और इतना ही नहीं, हालांकि देवराज इंद्र उनका भी एक एजेंडा था, इतना इतना अतिथि सत्कार उन्होंने क्यों किया, क्योंकि स्वर्ग में, स्वर्ग का एक भाग ये निवात कवच, ये निवात कवच नामक राक्षसों ने हड़प लिया था स्वर्गवासियों से। और ये इतने शक्तिशाली, ये 3 करोड़ निवात कवच, इनकी संख्या कितनी थी, 3 करोड़ इनकी संख्या थी। और इन निवात कवचों ने स्वर्ग में जाकर उन्होंने एक हिस्सा पूरा अपने लिए हड़प लिया और वहीं पे रहते थे। और कोई ये 33 करोड़ देवता मिलकर भी नहीं निकाल पाए इनको। होता ना कई बार भारत में कोई टेनेंट बैठ जाता है और वो 20-25 साल वहां रह ले, तो उसको कोई लैंडलॉर्ड कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आजकल तो लॉ थोड़ा बदल चुका है, लेकिन पहले बंबई में ये सब कुछ ऐसे हुआ करता था। तो वैसे ये निवात कवच बैठे और कोई इनको हिला नहीं सकता था, और सब ये परेशान क्योंकि ये राक्षस ये बिना किसी गुण धर्म के वहां पर बैठे हैं, और 33 करोड़ देवता मिलकर भी ये इन 3 करोड़ निवात कवचों को वहां से निकाल नहीं पाए। तो फिर जब अर्जुन वहां पर पहुंचे तो देवराज इंद्र वो फिर सब जो भी पार्टियां हुई अर्जुन के साथ, सोमरस इत्यादि और अप्सराओं के साथ, उसके बाद फिर अकेले में देवराज इंद्र अर्जुन को कहते हैं, तो निवात कवच के बारे में सुना होगा ना, थोड़ा अपनी कृपा उनके ऊपर भी करो। तो अर्जुन अकेले और वो 3 करोड़ अकेले अर्जुन। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि हम पीछे पीछे से आएंगे यदि, अर्जुन ने कहा नहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो अकेले अर्जुन ने 3 करोड़ निवात कवचों, और ये निवात कवच कोई साधारण राक्षस मायावी थे, ये अलग अलग प्रकार की माया जानते थे और मिस्टिसिज्म जानते थे, इनके पास योग बल था। तो अर्जुन ने अकेले ही सिंगल हैंडेडली 3 करोड़ निवात कवचों का विनाश किया। तो ये एक और उनके बायोडाटा में एंट्री, कॉन्करर ऑफ 3 करोर निवात कवच। तो हमें तो लगा कौन निवात कवच, पहली बार सुन रहे, लेकिन उस समय ये बहुत फेमस थे या इनफेमस थे निवात कवच, कि उनके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो अर्जुन, वो भी अकेले। और इतना ही नहीं, जो फाइनल पीएचडी हासिल की अर्जुन ने, अभी तक तो केवल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन अब पीएचडी जो अर्जुन ने हासिल की, वो जो किसी ने आज तक भगवान विष्णु को छोड़कर किसी ने हासिल नहीं करी थी, वो अर्जुन ने की, केवल भगवान शिवजी को परास्त किया। यहां तक कि कंस, वो सब देवताओं में जाकर दहशत फैला चुका था, लेकिन जब शिवजी महेश धाम की ओर देखा तो फिर से रथ यू टर्न लेके आ गया, नहीं उधर नहीं, वहां पर खतरे से खाली नहीं कुछ। तो कंस वो फिर आ गया था, रावण पहुंच चुका था, रावण वहां तक पहुंच चुका था, और रावण की हिम्मत, उसने कैलाश धाम उठाने का प्रयास किया, थोड़ा हिलाने का प्रयास किया कैलाश पर्वत को। रावण देखो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, इतना उसके अंदर कुपेड़ था मन में, ये सब करता था। तो वो जब ऐसे उठा रहा है तो थोड़ा सा उठा दिया, भगवान शिवजी समाधि में जो थे, तो भगवान शिवजी की समाधि उसने भंग की, तो शिवजी जान गए। तो उन्होंने केवल अपने अंगूठे को दबाया, शिवजी ने केवल अपने अंगूठे को दबाया और गया है, तो पूरा उसका हाथ पैर सब कुछ दब गया उसके नीचे, और जोर जोर से चिल्लाने लगा वो, और वो जो इतना रुदन करने लगा, उसके पीछे उसको नाम मिला रावण, इतना रोता है, उसको नाम भी दीक्षा मिली। फिर तो फिर जब उसने प्रार्थना की, वैसे ही अटका हुआ हाथ पैर उसके कैलाश पर्वत के नीचे अटके हुए, वो प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, उसके बाद में फिर उसको भगवान शिवजी ने रिहा किया, और फिर तो वो भक्त बन गया, रोज फिर आराधना किया करता था भगवान शिवजी। तो ये कंस और ये रावण जो भगवान शिवजी से इतना भयभीत डरे हुए अर्जुन, जब भगवान शिवजी के साथ उन्होंने युद्ध किया तो भगवान शिवजी को परास्त किया, और भगवान शिवजी इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसा धनुर्धर और ऐसा योद्धा नहीं देखा, इसलिए मैं अपना पर्सनल वेपन आज तुम्हें देता हूं भेंट के रूप में। और भगवान शिवजी ने अर्जुन को दिया पशुपात अस्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये सारे क्वालिफिकेशंस, जो अर्जुन ने ख्याति हासिल की, भगवान कह रहे हैं कि ये सभी जो देवराज इंद्र, भगवान शिव जी जो इतने सारे अस्त्र शस्त्र तुम्हें दिए, वो सभी प्रतीक्षा में देख रहे हैं कि तुम कैसे अब धर्म की स्थापना करोगे, और तुम यहां पर बैठे मुंह लटकाए। तो केवल उनकी उनकी तरफ देखो, दे आर ऑल एक्सपेक्टिंग। जैसे आजकल ये उदाहरण से ज्यादा, आजकल के उदाहरण लोगों को ज्यादा समझ में आते, कि जब सचिन तेंदुलकर आता है पिच पे, है ना, बहुत खुश हो गए प्रभु जी, जब सचिन तेंदुलकर आता है तो सभी बहुत एक्सपेक्टेशंस उसके साथ, ले वो जीरो में आउट हो जाए या सचिन तेंदुलकर बैट रख दे, मैं नहीं खेलूंगा। तो फिर लोग कभी भगवत गीता सुने नहीं, ले लेके आएंगे भगवत गीता कि देखो कैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया था, और पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तुम भी वैसे ही करिष्ये वचनम तब, उठाओ अपना बैट, उठाओ और अपने देश के लिए लड़ो, देखो पाकिस्तान सब कौरवों के पक्ष के वहां पर खड़े हुए हैं। तो वैसे अर्जुन, खैर इनकी तो कोई तुलना भी नहीं है, अर्जुन जैसे महान योद्धा, तो भगवान अर्जुन की कीर्ति को याद दिला रहे हैं। ये सब कुछ ही क्वालिफिकेशंस है अर्जुन के जो हम यहां पर आज सुन रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म और तुम्हारी कीर्ति ये दोनों नाश हो जाएगी यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे। अब अर्जुन का ये प्रश्न, जब भगवान ने कहा कि हित्वा पापम अवाप्स्यसि, कि न केवल तुम्हारी ख्याति नष्ट हो जाएगी अर्जुन, तुम पाप में संलग्न होगे यदि तुम ये युद्ध नहीं करोगे। तो अर्जुन का प्रश्न है कि भाई नहीं, युद्ध नहीं करने से मुझे पाप कैसे लगेगा, कुछ नहीं कर रहा हूं ना, मैं नहीं मार रहा हूं तो उसमें मुझे पाप कैसे लगेगा। तो यदि ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाए कि अर्जुन युद्ध नहीं करने से अर्जुन को पाप कैसे लगेगा, जब अर्जुन ये बोल रहे थे कि मैं अपने स्वजनों को मारने का तो पाप ही होता है ना, किसी को भी मारना पाप ही है ना, अपने स्वजनों को मारना तो और भी गहन पाप। अच्छा एक हाँ आप बोलिए, नहीं तो नहीं लड़ने से पाप कैसे लगेगा अर्जुन को, ये प्रश्न ये। अच्छा तो एक यहां पर उत्तर दिया जा रहा है कि अवज्ञा, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की अवज्ञा होगी इसलिए पाप, अर्जुन पाप के भागीदार हो। और कोई, हाँ डॉक्टर साहब, यदि युद्ध नहीं कर रहा है तो वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, स्वधर्म नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ क्या बात है, लेकिन आजकल बिना पेपर लिखे भी रिजल्ट आ जाता है लोगों हाँ बोली, यस गुड। तो यहां पर सर्वप्रथम ये कारण दिया गया है, कीर्ति का जब सदुपयोग नहीं होता तो वह पाप है। इसलिए जब प्रकृति किसी को बहुत यशस्वी बना देती है, सक्सेसफुल, फेमस, कीर्तिवान, तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी होती है, उस यश के पीछे एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व होता है। जब उसे वो नहीं निभाता, जैसे श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को ये पत्र लिखा था, उन्होंने कहा कि आप इतने अब विख्यात हो चुके हो एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में, एक सत्यवादी के रूप में आप विख्यात हो चुके हो, तो यदि आप भगवत गीता का प्रचार करोगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा वो। और प्रभुपाद ने यह भी लिखा, नहीं करोगे तो वो उसका दुष्परिणाम होगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं, तब तक यदि वो अपने जो भी स्वधर्म का पालन नहीं भी करता तो उसका इफेक्ट, उसके पाप का इफेक्ट इतना नहीं। लेकिन यदि उसको ख्याति प्राप्त होगी, जैसे अर्जुन को, और वो भी क्षत्रिय के रूप में, जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हयग्रीव प्रभु, वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट थे हर चीज के मैनेजमेंट में। तो अमेरिका के एक टेम्पल के वो प्रेसिडेंट बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, लेकिन वो समय हयग्रीव प्रभु गृहस्थ थे। तो जब तमाल कृष्ण महाराज ने हयग्रीव प्रभु को कहा कि आपको इस मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट बनना है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ये सब काम नहीं, मुझसे नहीं होगा टेंपल प्रेसिडेंट। तो फिर प्रभुपाद के सामने तमाल कृष्ण महाराज गए कि वो तो मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, सेंड हिम इन द लायंस डेन, मेरे पास भेजा। तो फिर हयग्रीव प्रभु प्रभुपाद के पास आए। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरी ये इच्छा है कि तुम संन्यास लो। बोले, प्रभुपाद अभी अभी मेरी शादी हुई है। तो प्रभुपाद ने कहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना संन्यास लो। लेकिन प्रभुपाद मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं जो तुम्हारा गुरु है वो बोल रहा है संन्यास लो अभी तुरंत। तो वो एकदम, अब सोचिए कि जिसकी अभी अभी शादी हुई है, कई बार जिसकी शादी नहीं भी होती उसको भी यदि बोलो संन्यास लो तो वो भी हिल जाता है। तो अभी अभी शादी हुई और संन्यास लेने के लिए, तो बोले प्रभुपाद आई विल डू एनीथिंग एल्स। प्रभुपाद ने बोला बिकम टेंपल प्रेसिडेंट। तो बहुत चतुर थे प्रभुपाद के, आई वॉज अ बंगाली बिजनेसमैन, नोबडी कुड प्ले अराउंड विथ मी। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके जीवन की भी एक ऐसी कथा है कि दार्जिलिंग में एक गौड़िया मठ स्थापित किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और वहां के लिए उनको कोई टेंपल प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा था। तो कोई तैयार नहीं था, दार्जिलिंग कहा, दार्जिलिंग किधर जाएंगे पता नहीं, तो सब हनीमून के लिए जाते हैं, तो कोई ब्रह्मचारी वहां जाने के लिए तैयार नहीं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल सुबह मैं जिस ब्रह्मचारी को पहला देखूंगा उसको जाना है उधर। सोचो ऐसा मैनेजमेंट यदि कहीं पे कर दे, फर्स्ट ब्रह्मचारी आई सी ही विल गो टू दार्जिलिंग। तो अब सुबह कोई दिख नहीं रहा है, कहीं पे कोई नहीं, पूरा सब छुपे हुए हैं, यहां वहां कोई कोई बाथरूम से बाहर ही नहीं आया, वो टॉयलेट में ही, वहीं पे सब माला चालू है बिना। तो जो पोस्टमैन आया और पोस्टमैन ढूंढ रहा है, वो कोई चिट्ठी देने आया, कोई नहीं, आज इतने सारे ब्रह्मचारी गए कहां। तो एक ब्रह्मचारी वो पोस्टमैन को देखा और उसने जाके चिट्ठी ली और बोला कि ऐसे ऐसे आज सरस्वती ठाकुर ने बोला है। तो पोस्टमैन भी डर गया, बोला यार मेरे को देख लेंगे, मेरे को भेज देंगे उधर। तो वो भी भाग गया। और फिर टाइम आया कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर को अब प्रसाद देना था, तो जो ब्रह्मचारी नियुक्त किया गया था उनको प्रसाद देने के लिए सभी गए, जाओ तुम्हारी ड्यूटी है ना प्रसाद, जाओ जाओ भाई। तो सभी हो रहे, इनको देख लेंगे तो इनको भेज देंगे ना, तो हम बच जाएंगे फिर। तो अब ये डर रहे कि अभी प्रसाद, उनको प्रसाद तो देना है लेकिन कैसे जाऊं प्रसाद देने के। तो फिर वो भगवद गीता में अर्जुन का उदाहरण ध्यान में रखते हुए, यही जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो शरणागत हुए भगवान श्री कृष्ण को, और जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वो अर्जुन ने किया, तो वो उन्होंने याद किया और फिर वो गए और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए उनसे, क्योंकि वो जानते थे कि सब छिपे हुए हैं यहाँ वहाँ और ये हिम्मत करके आए हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी कृपा उनको दी और आगे चलकर वो बहुत बड़े सन्यासी भी बने। तो ओबीडियंस और कैसे इन्होंने अपने गुरु और उनके जो अधिकारी उनके आदेशों का पालन किया। तो इसलिए जब किसी के अंदर कोई यश है, कोई प्रसिद्धि है, कोई कीर्ति है, यदि उसका सदुपयोग वो नहीं करता, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को कहा, जॉर्ज हैरिसन वो प्रभुपाद पे आशा है कि मुझे हेड शेव करके ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना है, आपसे दीक्षा लेनी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद गए, यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड। बोला हाउ कम? बोला जॉर्ज हैरिसन, हैरिसन, यू आर हैरिसन। और फिर प्रभुपाद ने कहा यू हैव दिस टैलेंट ऑफ सिंगिंग एंड मोर देन दैट यू आर सो फेमस। जॉर्ज हैरिसन कितने फेमस थे वो, सो यूज योर फेम इन कृष्णा सर्विस, दैट इज बेटर देन ज्वाइनिंग एज अ ब्रह्मचारी। तो श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को उस प्रकार से, जैसे यहां पर भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम इतने प्रसिद्ध योद्धा हो, उस प्रसिद्धि को धर्म की स्थापना करने के लिए इस्तेमाल करो। और क्षत्रिय यदि पापों का विरोध नहीं करते तो उसी पाप के भागीदार वो बनते हैं। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि यदि अर्जुन वो युद्ध नहीं लड़ते तो जितने सारे एकत्रित वहां के योद्धा उनको क्या लगता कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे तो फिर हम क्यों लड़े। और उससे यह समझ में आता क्यों अर्जुन नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो अपने आप को दोषी मान रहे। तो सबको यह लगता कि कौरवों से युद्ध करना यह हमारा दोष है और कौरवों को प्रोत्साहन मिलता अधर्म फैलाने के लिए। और तो देखिए उसका ये रिपल इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यदि ये युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। अब यदि हम हमारे जीवन में हम जो हमारा स्वधर्म करने का प्रयास कर रहे हैं साधना भक्ति के द्वारा, तो रामायण से पापों के विषय में उसकी व्याख्या की गई है। जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को अयोध्या से ले जाते हैं अपने गुरु को, कारण क्या था कि उनके यज्ञ में ये राक्षस ताटका, सुबाहु और मारीच, तो ताटका, सुबाहु और मारीच ये तीन, तो ताटका वो राक्षसी थी। तो प्रभु श्री राम हालांकि वो बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ अब धर्म की स्थापना करने के लिए इतने कम उम्र में ही, प्रभु श्री राम वो केवल उनकी उम्र कुछ 10 वर्ष से भी कम थी, उस उम्र में अब इतने बड़े बड़े राक्षस, ताटका जैसी राक्षसी, तो प्रभु श्री राम पहले सोचे कि अरे मैं आया हूं राक्षसों का वध करने के लिए, लेकिन विश्वामित्र मुनि से पहले लेडी, स्त्री, विश्वामित्र मुनि बोले हाँ लेडीज फर्स्ट। और अपने कृष्ण अवतार में भी उन्होंने सबसे पहले कौन से राक्षस का वध किया, पूतना, उस समय भी सोच रहा है, पिछले अवतार में भी वही आई थी एक, अभी भी ये पूतना चल क्या रहा है। तो ताटका का वध किया, तो ताटका आचार्य बताते हैं कि ताटका किसका स्वरूप थी, स्वधर्म का अज्ञान, जैसे कि अर्जुन अपने स्वधर्म के अज्ञान में है तो ताटका वो अपने स्वधर्म के अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने ताटका का वध किया, इस अज्ञान का नाश किया। और ताटका के एसोसिएट सुबाहु, सुबाहु का वध भगवान ने किया, जो प्रतीक था भक्ति में आने से पूर्व हमारे जो पाप कर्म, भक्ति में आने से पूर्व हमारे जो पाप कर्म हमने किए उनका प्रतीक है सुबाहु। लेकिन प्रभु श्री राम ने मारीच का वध नहीं किया, आगे चलकर वो मारीच आया ना सीता का हरण के समय, यही नासिक सोने के हिरण के रूप में, तो मारीच को प्रभु श्री राम ने केवल एक लात मारी और 800 मील वो आगे समुद्र में जाके गिरा, ये मारीच। इसलिए जब रावण मारीच के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये राम कौन है, ये राम से मुझे बदला लेना है, तो मारीच को याद आ गया है और कोई बोलो लेकिन ये नहीं, बहुत प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो मारीच को भगवान ने खत्म नहीं किया, मारीच को केवल दंड देके भगा दिया। तो मारीच प्रतीक है भक्ति में आने के पश्चात हमारी जो पाप वृत्ति है उसका प्रतीक मारीच है। तो भगवान उसे हमारी साधना भक्ति से, क्योंकि वो अभी तक हमने पाप किए नहीं लेकिन वृत्ति है, इसलिए भगवान उसे दूर फेंकते हैं और यहां तक कि अपने जो भी आंदोलन की स्थापना करने के लिए कई बार भगवान उस मारीच का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहां तक कि कई बार हमारी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का इस्तेमाल हम भक्ति में कर सकते हैं यदि वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो, लेकिन उसमें बहुत सावधान किसी को होना चाहिए। जैसे कि रशिया में जब हमारे हरे कृष्ण भक्त, उस समय जो कम्युनिस्ट का रजीम था, तो केजीबी जैसे सीआईए अमेरिका का सिक्योरिटी फोर्स है, इंटेलिजेंस फोर्स, वैसे यहां का था केजीबी, बहुत खतरनाक है केजीबी, मतलब कोई केजीबी का है समझ में नहीं आता कौन केजीबी का है कौन नहीं है, खतरनाक लोग है। तो वहां पर एक ऐसी घटना हुई, एक हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो रशियन बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो बुक बांट रहे थे रास्ते पर, तो कुछ गुंडे आए और इनको मारने लगे, इस ब्रह्मचारी को मारने लगे। तो ये केजीबी का आदमी वो सिविल ड्रेस में वो देख रहा था कि ये गुंडे मार रहे हैं, तो वो आए और वो गुंडों को मार मूर के उन्होंने भगा दिया। तो अब ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि इसने मेरी मदद की तो इसको बुक देनी चाहिए, लेकिन ये केजीबी की और इनको मतलब ये सब काम ऐसे स्ट्रीट फाइट में कभी लगने की अनुमति नहीं होती थी, तो ये जाने लगे। तो ये पीछे पीछे बुक डिस्ट्रीब्यूटर की, अरे आप कहां रहते हैं, आप बुक देखिए, नहीं उससे बात मत करो, वो जानते थे ये तो एक तो हरे कृष्णा का है, नहीं बस हो गया, मेरे को जो करना था मैंने कर दिया, नहीं ये आप रखो मेरी तरफ से भगवद गीता दे दी उन। अब ये भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ किए केजीबी एजेंट, और ये बड़े ऑफिसर थे, भगवद गीता पढ़ना, तो अब बाकी जो केजीबी के वो डिपार्टमेंट के थे वो देखने लगे कि ये क्या आजकल रोज पढ़ता है, तो उन्होंने रिपोर्ट लिख दिया कि ये हमारे जो ऑफिसर हैं ये रोज घुटनों पर पता नहीं हाथ जोड़कर कुछ सीक्रेट मैसेजेस करते हैं, वो माला करते थे, तो कुछ सीक्रेट मैसेजेस पास होते हैं, तो धीरे धीरे फिर ये डिवोटी बन गए, ये केजीबी के ऑफिसर भगवद गीता पढ़कर ये डिवोटी बन गए, और ये आगे चलकर वेस्ट जर्मनी के हमारे इस्कॉन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बने। और ये याद करते हैं कि वो एक मतलब उनके अंदर ये वृत्ति थी कि कोई यदि इस प्रकार से किसी के ऊपर गुंडागर्दी करता है तो मारो उसको, उनके अंदर यह वृत्ति नहीं थी कि हरे कृष्णा को मुझे बचाना है, इसको मारना है, लेकिन उसके वजह से वो आगे चलकर भक्ति में लगे और आज भी बहुत अच्छे वो भक्त हैं। तो यहां पर भगवान जो अर्जुन को पाप के विषय में बता रहे हैं, तो पाप की व्याख्या रामायण से हमारी साधना भक्ति में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ताटकासु बाहु और मारीच के उदाहरण के द्वारा। और अंत में कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये जो दो महीने हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कल ही हम ब्रह्मचारियों के साथ एक पिकनिक में गए थे, कहाँ कौन सा जगह था, राउरी, तो वहां गए थे, तो वहां पर इस मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा की। मैंने सोचा कि आज का श्लोक भी उससे कुछ संबंधित है। तो कार्तिक का महीना जो चल रहा है, और कार्तिक के महीने के पश्चात महीना आता है मार्ग शीर्ष, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है ये दोनों महीने, कार्तिक का महीना और मार्ग शीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसलिए हम साधकों के लिए ये दो महीने बहुत महत्वपूर्ण है, कार्तिक और मार्ग शीर्ष। ये क्यों? क्योंकि कार्तिक में यदि हम देखें तो भगवान ने लीलाएं की किनसे, ब्रजवासियों के साथ, और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान ने गीता सुनाई, तो वो भगवान की लीला पांडवों के साथ। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भगवान की लीलाओं में ये दो कॉम्बिनेशन, ब्रजवासियों के साथ भगवान की लीला और पांडवों के साथ भगवान की लीला, तो हम जो साधक हैं जो दोनों के विषय में सुनते हैं, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, फिर वापस कार्तिक, फिर वापस मार्गशीर्ष, तो हमारे लिए ये दोनों क्यों इतने आवश्यक है? क्योंकि भगवान ने कार्तिक में अपने लीलाओं के द्वारा, ब्रजवासियों के साथ जो उन्होंने लीला की, उसके द्वारा प्रेम धर्म प्रस्थापित किया, प्रेम धर्म। और पांडवों के साथ जो भगवान ने लीला की, उसके द्वारा भगवान ने कर्तव्य धर्म। तो हमारी साधना भक्ति में भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमारा गोल तो वृंदावन, गोलोक वृंदावन, और चैतन्य महाप्रभु हमें राधा भाव द्युति सुविलतम वो सब लाके दिए, तो फिर कर्तव्य, ये सब जो कर्म योगी होते हैं ना, हम तो भक्ति योगी। लेकिन नहीं, कर्तव्य पांडवों के द्वारा, क्योंकि यदि पांडवों का जीवन देखें तो उनके जीवन में उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे ड्यूटीफुली उन्होंने किया, इसलिए भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते थे। यदि हम वृंदावन की लीला देखें तो वृंदावन की लीला कितने वर्ष तक थी भगवान की, 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे, और टोटल भगवान इस पृथ्वी पर रहे 125 कुछ वर्ष, तो 114 वर्ष भगवान बाहर रहे, वृंदावन के बाहर। तो वृंदावन में जब तक रहे भगवान कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए वृंदावन के बाहर जाना पड़ा भगवान को। तो जब भगवान मथुरा गए, द्वारका गए, भगवान ने कंस का वध, जरासंध, ये रुक्मी और इत्यादि, यहां सब जाकर भगवान ने, हस्तिनापुर जाकर भगवान ने कर्तव्य क्या है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर ज्यादा जोर दिया। तो हमारी साधना भक्ति में भी हां, हमारा गोल है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को, ब्रज प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अभी के जीवन में हम अपने कर्तव्यों का पालन कितनी अच्छी से कर रहे हैं, जो भगवान ने इतना उस पर जोर दिया। इसलिए भगवान जब वृंदावन में थे तो वहां से भगवान ने अक्रूर को मथुरा से भेजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र का जो दुर्योधन, उसने बचपन में पांडवों को विष पिला दिया था। भगवान चिंता कर रहे थे, अपनी प्रेम लीला करते समय पांडवों की चिंता कर रहे थे, सोचिए। इसलिए कॉम्बिनेशन भगवान का है कि भगवान वृंदावन में कर्तव्य धर्म का पालन कैसे करना है उसके बारे में सोच रहे थे पांडवों के बारे में, और जब भगवान पांडवों के साथ रहते थे तो ब्रजवासियों के बारे में सोचते थे। तो भगवान ये सिखा रहे थे कि हमारे साधना भक्ति में ये दोनों का हेल्दी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसलिए हम उदाहरण दे रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर का, कि भक्ति विनोद ठाकुर वो एक उदाहरण है ये दोनों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ और इतने एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्ड गृहस्थ वो थे उन्होंने। और उनके जीवन को यदि आप पढ़ें, उनकी एक है स्वलिखित जीवनी भक्ति विनोद ठाकुर की, उसमें यदि हम पढ़ेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कर्तव्य धर्म के ऊपर इतना जोर दिया। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, वो कौन है, मंजरी हैं गोलोक वृंदावन के, लेकिन इस भौतिक संसार में उन्होंने जो भक्ति साधना भक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया, कर्तव्य एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स, उस पर इतना जोर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर के 15 बच्चे थे। सोचिए, कोई गृहस्थ ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं अपने परिवार को संभालने के लिए यदि थोड़ा अनैतिक भी बन जाऊं, इमोरल भी बन जाऊं, अपने थोड़े कर्तव्य को यहां वहां मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने, वो जब उला गांव में रहते थे तो वहां पर बीमारी के वजह से उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ा, और वो जब कलकत्ता गए तो उनके पास कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा परिवार संभालना, इतनी बड़ी गृहस्थी संभालना, और उन्हें एक शुगर मर्चेंट ने एक दलाल बनाया अपने बिजनेस में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत कुछ कपट चलता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कपट नहीं कर सकता। तो उसने कहा, भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हें संभालने हैं या तुम्हें मेरी नौकरी करनी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपने प्रिंसिपल से। तो भक्ति विनोद ठाकुर, हालांकि इतने बड़े स्तर के भक्त, लेकिन उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस के आड़ में अनएथिकल बिहेवियर कभी नहीं किया। इसलिए ये हमारे लिए सीखने लायक है। और हम जानते भी नहीं होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बिना संस्था के, बिना किसी मॉनेटरी सपोर्ट के, उनके 18,000 डिसाइपल्स थे। 18,000 डिसाइपल्स भक्ति विनोद ठाकुर हैड उस समय 18th सेंचुरी में। और भक्ति विनोद ठाकुर जब दीक्षा देते थे तो 6 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स उनके होते थे। 4 तो हम जानते हैं, 5th रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नो चीटिंग, 6th रेगुलेटरी प्रिंसिपल नो लाइंग। और वो अपने जीवन में उन्होंने ये सब कर्तव्य का पालन किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि उस समय क्यों वो इतना कर्तव्य पर जोर देते थे, हमको लगता होगा अरे शुद्ध भक्ति करो ना, क्या ये सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में इतनी चर्चा करना या गौर करना, क्योंकि उस समय सहजियावाद बहुत प्रेवलेंट था। सब कुछ सहज रूप से ले लेना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारा उद्धार करेंगे, हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम तो रास लीला उसी में निमग्न रहेंगे। तो जो सहजियावाद, उसका खंडन करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कर्तव्य धर्म का पालन। इसलिए जब हम पांडवों का जीवन देखें तो पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो व्यवहार किया, एक और कारण पांडवों को भगवान ने अपनी इतनी कृपा इसलिए दी, पांडवों की तुलना यदि यादवों से करें, भगवान यादव कुल में जन्मे लेकिन यादवों का संहार भगवान ने करवाया, क्योंकि वो यादव भगवान को सहजता से ले रहे थे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने सहजियावाद का खंडन किया, वैसे यादव भगवान को सहज रूप से ले रहे थे, और इसलिए वो आपस में अहंकार की वजह से लड़ मरे। लेकिन पांडवों के विषय में बताया गया है कि इतने कारण आपस में लड़ने के होने के बावजूद कभी वो लड़े नहीं आपस में पांडव, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल रीजंस टू फाइट अमंग्स ईच अदर पांडवस नेवर फॉट। सबसे बड़ा कारण यदि कोई देखे आज से कलयुग से कि पांचों की एक पत्नी, बहुत बड़ा कारण है झगड़ा करने के लिए। ऐसा नहीं कि पांच पांडव वो द्रौपदी के साथ लॉयर को हर समय लेके घूमते कि किसको डिवोर्स कर रही है या। अब देखिए अर्जुन जीत के लाए द्रौपदी को, अर्जुन जीत के लाए और जब कुंती महारानी ने कह दिया कि बांट लो, तो अर्जुन ने ये लेकिन जीत के तो मैं लाया ना, और इससे भी ज्यादा जब युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा में सभी पांडवों को दाव पे लगा दिया, अन्य भाइयों को दाव पे लगा दिया और द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, उस समय भीम वो क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि ये जो आपने आज किया है, वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो जुआरी होते हैं जो वैश्याओं के साथ संग करते हैं वो भी वैश्या को दाव पे नहीं लगाते, तुम द्रौपदी को दाव पे लगा दिया और तुम धर्मराज हो। तो जब भीम थोड़े क्रोधित हुए युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, तब अर्जुन वहां पर खड़े हुए, क्योंकि अर्जुन हर समय मीडिएशन करते थे युधिष्ठिर और भीम के बीच में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एकदम कूल काम कंपोज और भीम हर समय वो गदा उनके रीच में रहता था, वो विद इन द रीच रहता था। तो अर्जुन बीच में खड़े हुए और अर्जुन ने भीम से कहा कि ये जो तुम युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हो यही तो ये लोग चाहते हैं, कौन शकुनी दुर्योधन दुशासन यही चाहते हैं कि हम में फूट हो, दिस इज व्हाट दे वांट दैट वी शुड फाइट अमंगस्ट ईच अदर एंड दिस इज व्हाट वी शुड नॉट गिव देम। तो जब भीमसेन ने अर्जुन के वाक्य सुने वो शांत हुए, उन्होंने कहा हां ये बात सही है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पांचों में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, नेवर एवर। और अज्ञातवास 12 वर्ष, एक वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, वो 13 वर्षों में एक बार भी उन्होंने सरकास्टिकली या व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से युधिष्ठिर महाराज को नहीं कहा ये तुम्हारे वजह से हम यहां भुगत रहे हैं आज, एक बार भी युधिष्ठिर महाराज को कोई ऊंचा नहीं बोला या झगड़ा कुछ उनका हुआ नहीं। तो सोचिए कि, और द्रौपदी के विषय में बताया गया है कि द्रौपदी के अंदर ऐसे गुण थे कि वो पांच पत्नियों को संभाल पा रही थी, कि इतने द्रौपदी के अंदर सद्गुण थे कि वो पांचों को वो संतुष्ट और खुश रख रही थी, कि सत्यभामा और द्वारका की जितनी पटरानियां वो द्रौपदी को लेकर कही कि ये कैसे आप संभव कर पा रहे हो, सेमिनार दो हमको। तो द्रौपदी ने इन, सोचे सत्यभामा कौन है, श्रीमती राधारानी, और बाकी रुक्मिणी, ऑडियंस में देखो कौन कौन बैठे हैं द्रौपदी के, हम वो बोल रहे थे कि ये चेतना प्रोग्राम था उनका, द्रौपदी चेतना दे रही है और ऑडियंस में रुक्मिणी सत्यभामा और 16,108 पटरानियां बैठी और द्रौपदी वो बता रही हैं कि कैसे वो इनको संतुष्ट कर पा रही हैं पांच, और वो भी सब एकदम प्रोफेशनल्स। युधिष्ठिर महाराज वो अपने आप में एक बहुत बड़े धर्म के पालन करने वाले धर्मराज, और यहां अर्जुन इतने बड़े प्रोफेशनल वॉरियर आर्चर, और भीम नकुल सहदेव अलग अलग सब अपने अपने एरिया में सब एकदम बहुत कुशल, और उन सब को द्रौपदी संभाल रही थी। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि भारत में कोई अपने बेटी का नाम द्रौपदी नहीं रखता ज्यादा, केवल दीक्षा में इस्कॉन में देखते हैं गुरु देते हैं, तो अक्सर मैंने तो कभी देखा नहीं, द्रौपदी फिर डर रहता है पांच पत्तियों के साथ चली जाएगी। तो भगवान पांडवों को इतनी कृपा इसलिए दिए और यादवों को इतनी कृपा नहीं दी क्योंकि यादव अहंकारी हो चुके थे, लेकिन पांडव जो इतना भगवान से संग मिला कभी उनमें अहंकार नहीं हुआ कि देखो भगवान कृष्ण हमारे साथ कितना रहे, कभी उनके अहंकार नहीं हुआ और कभी उन्होंने लड़ाई नहीं की आपस में। सो ये जो दो क्वालिटीज उनके अंदर थी, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल, डूइंग व्हाट कृष्ण वॉन्टेड, एंड दैट्स व्हाई कृष्ण स्पेंड सो मच टाइम। तो इसलिए हमारे लिए ये कार्तिक का महीना और कार्तिक के बाद का महीना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और कई बार मार्गशीर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, ब्रजवासियों से प्रेरणा और पांडवों से प्रेरणा, प्रेम धर्म और कर्तव्य धर्म। और यही इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।